सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक रिवांश की हालत में भी कोई सुधार नहीं था। भले ही उसे कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तक वो एक गहरी नींद में सोया हुआ था। त्रिशान और अलीजा उसके पास खड़े थे। मुझे इसके लिए बहुत फ़िक्र हो रही है अलीजा, ये बुरा नहीं है, फिर इसने दादू के साथ वो सब क्यों किया होगा? त्रिशान ने चिंतित स्वर में कहा। ये इसने नहीं किया है त्रिशान, भले ही लोग स्वर्ग नरक अच्छे और बुरे कर्मों को ना माने, लेकिन हम तो अच्छे से समझते हैं ना कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर किसी शैतानी रूह ने अपना कब्जा किया था, अलीजा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये तो खुद एक वैम्पायर है। हाँ, तभी इसके पास इसकी खुद की आत्मा नहीं है, तो कोई भी दूसरी आत्मा आसानी से इसके शरीर पर कब्जा कर सकती है। अभिजा ने रिवांश के शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, इसके शरीर के बाल अभी भी खड़े हैं। बोलते हुए अलीजा ने अपने हाथों से रिवांश की आंखें खोलकर दिखाते हुए कहा, कभी तुमने रिवांश की आंखों को ठीक से देखा है? ये डार्क हेजल ग्रीन कलर की हैं, लेकिन अभी इनका कलर एकदम ब्लैक है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक उस शैतानी रूह का असर इस पर है, जिस वजह से ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है। मुझे आकांक्षा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, एक तरफ उसके दादू हैं तो दूसरी तरफ रिवांश। उसके माँ बाप की मौत के बाद दादू उसका इकलौता सहारा थे, और रिवांश के लिए प्यार और अपनापन आकांक्षा की आंखों में साफ दिखाई देता है। उसने तो इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो एक वैम्पायर है, त्रिशान ने कहा। अलीजा, अभी इन सब का वक्त नहीं है त्रिशान, हमें कैसे भी करके रिवांश को नॉर्मल करना होगा। भगवान न करे कि कल को उसकी दादाजी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसे संभालने के लिए रिवांश नहीं होगा, त्रिशान ने हामी भरी और अलीजा के कहे अनुसार करने लगा। अलीजा कुछ जड़ी बूटियों से तैयार कर रही थी, जबकि त्रिशान उसके गले में कुछ पवित्र मालाएं वगैरह डाल रहा था। राज पुरोहित जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, उन्हें राजवीर जी की हालत के बारे में बता दिया गया था। उनसे अकेले में बात करने के लिए आकांक्षा उस प्राइवेट रूम में गई जहां वो लोग ठहरे थे। आकांक्षा की हालत ठीक नहीं लग रही थी, वो काफी देर से बस रोए जा रही थी। उसे देखकर राज पुरोहित जी ने कहा, तुम चाहती तो इस दुनिया को आने वाली सबसे बड़ी तबाही से बचा सकती थी आकांक्षा, वो एकमात्र मौका था जब तुम्हें माता रानी का जागृत शस्त्र मिला था, अगर उस वक्त तुम उस पिशाच को खत्म कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। वो रिवांश नहीं था जिसने दादू पर हमला किया था, वो बुरा नहीं है राज पुरोहित जी, उसके अंदर कोई और शैतानी आत्मा थी, मैंने देखा था, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और चेहरा मानो, आकांक्षा बोल रही थी कि तभी राज पुरोहित जी ने उसकी बात काट कर बोला, मानो किसी ने आग में जला दिया हो और वो अभी तक जल रहा हो। आपको कैसे पता? आकांक्षा ने हैरानी से पूछा। वो स्वयं शैतान था आकांक्षा, एक बार नहीं हर बार आएगा हमें रोकने के लिए, पिछली बार भी आया था जब हम उस शस्त्र को जागृत कर रहे थे, तुमने उसकी इतनी बुरी आत्माओं को खत्म कर दिया, उसके बावजूद तुम यहां सही सलामत हो, इसका मतलब तुम खास हो। वक्त नहीं है आकांक्षा, तुम्हारे देखे सपने सच होने लगे हैं, इसका मतलब वो वक्त भी आने वाला है जब तुम्हारा शैतान से सीधा सामना होगा। राजपुरोहित जी के कहते ही आकांक्षा थोड़ी घबरा गई। मुझसे ये नहीं होगा राजपुरोहित जी, मुझे ये शक्तियां क्यों मिली, मैं इनके लायक नहीं हूं, ये उन्हें मिलनी चाहिए थी जो बहादुर हों, मैं मेरे दादू को नहीं खो सकती, कहीं सच में उन्हें कुछ हो गया तो, बोलते हुए आकांक्षा फिर से रो पड़ी। तुम बहादुर हो आकांक्षा, तभी तुम्हें चुना गया, देर है तो बस खुद को पहचानने की, अभी के लिए तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर फिर से कोई मौका मिले जिसमें तुम्हें रिवांश को मारना पड़े तो पीछे मत हटना, राजपुरोहित जी ने कड़े शब्दों में कहा। लेकिन मेरे दादू, वो तो ठीक हो जाएंगे ना राजपुरोहित जी? आकांक्षा ने पूछा। अलीजा, त्रिशान जिस जादूगरनी अलीजा को जानता है उसे यहाँ बुलाओ, वो उस वक्त से है जिस वक्त पिशाच खुलेआम इंसानों का शिकार किया करते थे, वो अच्छे से जानती होगी इसका तोड़ क्या हो सकता है। राजपुरोहित जी के कहते ही आकांक्षा ने उसी वक्त त्रिशान को कॉल किया। हेलो त्रिशान, प्लीज तुम इसी वक्त अलीजा को लेकर यहाँ आ जाओ, उसे बता देना कि यहाँ क्या हुआ था, अब वही मेरे दादू को बचा सकती हैं, कहकर आकांक्षा ने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा के कॉल आने के बाद त्रिशान जल्दी से अलीजा के पास गया। अलीजा, रिवांश ने आकांक्षा के दादाजी को जहां पर काटा था, क्या उसको तुम ट्रीट कर सकती हो? मेरे दादू का कहना है कि तुमने अक्सर इस तरह के केसेस पहले भी हैंडल किए होंगे, क्योंकि तुम्हारे टाइम में, त्रिशान ने अपनी बात खत्म भी नहीं थी कि अलीजा बोल पड़ी। हाँ, मैं देख लूंगी, लेकिन तुम एक पल के लिए भी रिवांश को अकेला मत छोड़ना, क्या पता शैतान फिर से इसके शरीर पर कब्जा कर ले। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने उसके गले में पवित्र रुद्राक्ष की माला डाल दी है, मुझे पता है इसे इससे भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन शैतान से दूर रहने के लिए अभी उसे उस माला को धारण करके रखना होगा।
त्रिशान की बात सुनकर अलीजा बेफिक्र हो गई और अपने साथ कुछ सामान लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर राजवीर जी का इलाज कर रहे थे। इन सब के बीच अलीजा का अंदर जाना बहुत मुश्किल था। थैंक यू सो मच अलीजा कि तुम यहाँ आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर तुम्हें अंदर जाने देंगे, उसे देखकर जानवी ने कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम जादूकरनियों के पास बहुत सी ट्रिक्स होती हैं। मैं खुद को अदृश्य कर लेती हूँ, उसके बाद अंदर जाती हूँ। जैसे ही अलीजा ने कहा, जानवी उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगी। मुझे समझ नहीं आता ये क्या बला है, कभी अदृश्य हो जाती है तो कभी उल्टी सीधी चीजें खिला पिला कर दूसरों से प्यार करवा देती है, जानवी ने बड़बड़ाते हुए बोला। अलीजा, मेरे दादू की जान तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपने मम्मी पापा को तो खो दिया, लेकिन मैं दादू को नहीं खोना चाहती। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, आकांक्षा ने भावुक स्वर में कहा। अलीजा ने उसे आश्वासन दिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी, जिसके बाद अगले ही पल वो अदृश्य हो गई। वो दबे पांव ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, जहां डॉक्टर्स राजवीर जी का इलाज कर रहे थे। उसने राजवीर जी के पास आकर कुछ मंत्र पढ़े और उनके कटे के निशान पर एक विशेष प्रकार की औषधि लगाई, जो कि अदृश्य अवस्था में थी। ऐसा करने के तुरंत बाद वो वापस बाहर आ गई। मैंने उन्हें औषधि लगा दी है जिससे उनके अंदर जहर नहीं फैलेगा। डॉक्टर्स वैसे भी उन्हें खून चढ़ा रहे हैं, तो स्थिति ठीक हो रही है, अलीजा ने उन्हें बाहर आकर बताया। आकांक्षा ने उसे थैंक्स कहा और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने राजवीर जी की स्थिति स्टेबल होने की बात कही, जिसे सुनकर आकांक्षा ने अलीजा की तरफ देखकर एक बार फिर से थैंक्स कहा। क्रमशः